ते वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की पांचवी गाथा चल रही है, जिसमें गाथा के प्रथम पाद की चर्चा कल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था तम ए यत्त विहत्तम, मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा जो अपने में अखंड है और जो पर से भिन्न है। पर से अभिन्न बताने वाला व्यवहार न असद्भूत है, और जो अखंड में भेद करने वाला व्यवहार न सद्भूत है, और दोनों व्यवहार में अतीत जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है उसे समझाने की प्रतिज्ञा आचार्य देव ने यहाँ की है। जब हम समय सार को पूरा आद्योपांत पढ़ते हैं तो हमें ये गाथा की ये पंक्ति इतना हिस्सा हमेशा याद रखना चाहिए कि कुंद कुंद ने इन गाथा समय सार में क्या बताने की प्रतिज्ञा की है। तो जो भी वो कह रहे हैं उसका उद्देश्य यह बताना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम भटकेंगे नहीं। अब दूसरा पाद जो है वो और महत्व, अब्दायेयम् अपणो सविदहेन, मैं ऐसे एकत्रित भगवान आत्मा को अपने वैभव से दिखलाऊंगा। ये जो वैभव शब्द है वो लोक में बाह्य में जो संयोग रूप है, परिग्रह है, उसको कहते हैं। इसलिए सीधा सच्चा अर्थ लोग उसका वही समझेंगे। अमृतंदाचार्य को यह बात गहराई से फीलिंग हुई कि मैं अपने वैभव से समझाऊंगा तो नग्न दिगंबरों के पास कौन सा वैभव है। वैसे तो भगवान आत्मा में एक विभुत्व नाम की शक्ति है, एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है, लेकिन उन विभुत्व और प्रभुत्व शक्तियों का भी संबंध कहीं बाहर से नहीं है। जगत जैसे वैभव कहता है उसे पुण्य के फल में प्राप्त होता है ऐसा कहा जाता रहा है। पुण्य के फल में प्राप्त होता है ये बात भी सही है, लेकिन और भी विशेष बात है इसमें, क्योंकि नारायण प्रतिनारायण यानी अर्ध चक्रवर्तियों के पद निदान से होते हैं, निदान बंध से होते हैं। निदान बंध को पुण्य भाव कह सकते हैं क्या, है ना? माने चक्रवर्ती का वैभव है ना, कैसे होता है निदान बंध से, और उस निदान बंध के साथ ये भी नक्की होता है कि तीन चक्र के मालिक बनेंगे हजारों हजारों वर्ष तक, तीन खंड पर एक छत्र राज्य करेंगे, 16,000 मुकुटबद्ध राजा इनके चरणों में झुकेंगे, लेकिन वे नियम से नरक जाएंगे ये भी साथ में ही नक्की होता है, नारायण और प्रतिनारायण सभी का। इसलिए वो पुण्य से मिलता है, काय से मिलता है, इसकी चर्चा विस्तार से अभी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तो नक्की है कि वो परिग्रह के जोड़ने का भाव पुण्य भाव नहीं है। और दूसरा, वो परिग्रह भी स्वयं पुण्य नहीं है। जैसे वैभव का एक नाम दें, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव जो भी दुनिया है, जैसे हम वैभव शब्द से कहते हैं, हम वैभव कहते हैं, और आगम जिनागम क्या कहता है उन्हें, वो कहता है कि पाप पांच होते हैं, उसमें हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह ये पांच होते हैं, और सबसे बड़ा पाप कौन है, ये बालबोध पाठमाला भाग दो में ये बात सिद्ध की है। बताइए बच्चों के भाग में, जो आज से करीब 38 वर्ष पहले लिखा गया था और पूज्य गुरुदेव श्री के सामने अक्षर अक्षर पढ़ के पास होने के बाद ही वो सब चीजें छपी थी। तो उसका कारण यह है वो तो परिग्रह में मिथ्यात्व तो शामिल है और मिथ्यात्व से बड़ा पाप दुनिया में हो नहीं सकता है। तो वो स्वयं पाप है और उसका रखने का भाव यदि वो रहे तो भी बंध पाप का ही होगा। पूजन में कहा है बहुधन बुरा ही। तो वो कहते हैं कि जिसको जगत वैभव कहता है उसको ये दुनिया यहां का वैभव नहीं समझ ले, तो उन्होंने वैभव की व्याख्या की है कि कुंद कुंदाचार्य का वैभव क्या था अथवा मेरा वैभव, मेरा माने अमरचंद का वैभव क्या है। तो ये बहुत ही मार्मिक प्रकरण है इस गाथा का और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भी इस पर आप लोग सुने पढ़ें तो आपको बहुत ही इसकी गहराई का ख्याल में आएगा। तो इन्होंने मैं अमरचंदाचार्य की टीका का वो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं उसके अर्थ की, ख्याल में आए ना, और उन्हें आप अपन उस पर चर्चा करेंगे। मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक स्याद पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म परमागम की उपासना से हुआ है। समस्त विपक्षी अन्नवादियों द्वारा गृहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्विध निर्वाध युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव अपर गुरु ग्रंथराधिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा के प्रसाद के रूप में प्राप्त शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह से एवं निरंतर झरते हुए स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त सुसंवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। और मूल संस्कृत की पंक्तियां का अक्षर सा कोमा फुल स्टॉप से जो अनुवाद है, इस भ्रम को पालने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा कि ये संस्कृत का है ये हिंदी का है इसमें आया होगा कि नहीं आया होगा। यदि इस भ्रम को दूर करना है आपको अपने स्वयं के पुरुषार्थ से तो हमारे इस महाविद्यालय में भर्ती होकर और शास्त्री बनना पड़ेगा, तब इसको आप अनंत भाई फिर कर सकते हैं, नहीं तो हमारी ही शरण में ही आना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या करोगे, पंडित हुकुमचंद की में जाओगे, जयचंद छापड़ा की में जाओगे, किसी न किसी पंडित की शरण में जाना पड़ेगा और अन्यथा वो जिनवाणी की भाषा है उसे स्वयं पढ़ना पड़ेगा। आखिर कोई जो बताएगा वो पंडित ही तो होगा ना, क्यों टीकाएं लिखेगा छपाएगा करेगा, है ना। इसलिए इस विकल्प में ज्यादा नहीं उलझना, कहीं कोई एकाध शब्द का होगा भी तो कोई भाव में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भूत जो मूल फंडामेंटल है। अब पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन को बताया तो मैं आपसे पूछता हूं वे पंडित थे कि आचार्य थे, जानना चाहता हूं आपसे, जिनके दिमाग में ऐसे विकल्प खड़े होते हैं, है ना, तो पंडित थे कि आचार्य थे। हमें देवसास गुरु की रक्षा करनी है आनंद भाई, तो देवसास गुरु में कौन से गुरु हैं आपके, कंज स्वामी देवसास गुरु वाले गुरु हैं, कौन है बताइए। जब देवसास गुरु की आप बात करते हैं, मैंने गुरुदेव श्री से इंटरव्यू लिया था और चैतन्य चमत्कार नाम की किताब 1,00,000 से ज्यादा छपी है, अभी हम और 10-20,000 छाप करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम तो दिगंबर गुरुओं के दासानुदास हैं, कुंद कुंद के अमृत चंद्र के समंत भद्र के,
आखिर गुरुदेव ने हमें बताया था तो उन्हें हम पंडित ही तो कहेंगे, महापंडित कहेंगे, बहुत बड़ा बुद्धिमान पंडित कहेंगे। और वे भी गुजराती छठवीं क्लास पास थे, संस्कृत तो पढ़ी नहीं थी उनने। उन्होंने भी जयचंद छावड़ा आदि किसी पंडित से ही की अनुवाद से ही समय सार का मर्म समझा है ना। इसलिए चित्त को भ्रमित करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और जो तुम्हें करना हो करो, लेकिन जिनवाणी के प्रति अश्रद्धा पैदा करने का महापाप का काम मत करो। तो वो क्या कहते हैं, मेरा वैभव कैसे, देखो पहला शब्द लिखा है मेरा निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक स्याद पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म परमागम की उपासना से हुआ है। ये इनडायरेक्ट वे में ये कह रहे कि तुम्हें आत्मा को समझना है ना, तो तुम आत्मा तुम्हारी समझ में इस वैभव से आएगा। बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूं मैं जतीश भाई, पहले भी कई दफे कहा है जब आप थे यहां थे, मैंने अभी भी यही हैं, लेकिन जैसे परमानेंट थे ना, तब भी मैंने कई दफे कहा है कि मेरे से लोग कहते पंडित जी मुझे तो आत्मा का अनुभव करना है, हर कीमत पर करना है, 2-5 लाख रुपया खर्च हो जाए तो मैं खर्च करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे आत्मा का अनुभव करना है। मैंने कहा तेरे को गारंटी से इस भ्रम में आत्मा का अनुभव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे को ऐसा मंगल आशीर्वाद काय को दे रहे हो कि भैया तू पैसे से खरीदना चाहता है सम्य दर्शन, और वो पैसे से नहीं मिलता है, दिक्कत ये है, तुम्हें 5 लाख खर्च हो जाए, 25 लाख खर्च हो जाए, 5 करोड़ खर्च हो जाए, क्यों? तो वो ये कह रहे हैं यहां पर कि वो मेरे वैभव का जन्म कोई धंधे से, पानी से, कल से, कारखाने से हल में ना पैदा नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, स्याद पद से मुद्रित। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस किताब के, इस किताब के, इस किताब, जो स्याद पद से मुद्रित है, जिस पर स्याद बाद की मुद्रा लगी है, उसकी सेवा, उसका अध्ययन मनन, सेवा उसकी क्या करना। और लोग कहते हैं कि हम तो देव सास गुरु के चरणों में माथा झुकाते हैं, क्योंकि देव के तो ठीक, गुरु के तो ठीक, सास के चरण कहां है, दिख रहा है आपको? अरे इसकी उपासना का अर्थ इसका स्वाध्याय है, इसके गहराई से ऐसे तत्व ज्ञान को समझना है, इसकी उपासना है ना, जावाणी के ज्ञान से सूजा लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा धोक हो, इससे काम नहीं चलेगा। जो गुरुदेव श्री अपने कई दफे कहा करते थे कि बेतार कला स्वाध्याय जोइए जोइए और जोइए, और जो करता था उसकी भगवान जैसी प्रशंसा करते थे। चंदू भाई के, डॉक्टर चंदू भाई के बारे में उनके दिमाग में ये बात आ गई थी, वो करते भी होंगे, ऐसा नहीं कहता, मुझे शक है कि वे नहीं करते होंगे, कि चंदू भाई डॉक्टर चार चार कला स्वाध्याय करता है, कहते भगवान का नाम नहीं लेते थे, चंदू भाई का नाम है, किसका नाम लेते थे, कि उनकी दृष्टि में भी स्वाध्याय की कितनी महिमा थी। और आज सारे विश्व में कांजी स्वामी के अनुयायी इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि वे स्वाध्यायी हैं, उनके हर मंडल में जहां भी वो हैं रोजाना स्वाध्याय चलता है, उसकी तत्व चर्चा चलती है, समयसार पढ़ा जाता है, मुक्तमार प्रकाशक पढ़ा जाता है, प्रचनसार पढ़ा जाता है। तो अपना जो जिससे तुम्हें ये एकत्र भक्त भगवान आत्मा समझ में आएगा, वो काय से आएगा, ये कौन से बाजार में मिलता है, ये किस किने कीमत चुकानी पड़ेगी, ये अमेरिका में जाओगे तो तुम्हारा रुपया नहीं चलेगा, वहां डॉलर में कीमत चुकानी पड़ेगी, ब्रिटेन में जाओगे तो पौंड में कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हारा रुपया काम नहीं आएगा। तो यहां पर तुम्हारा ये वैभव ये काम नहीं आएगा। यहां पर जो आगम के सेवन से क्या, और आगम के सेवन को मोक्ष मार्ग पे कह सकते हैं, क्या लिखा है वो कौन सा पेज है, 252 कितना है, 257 उसमें लिखा है पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना लिखना, सब लिखा क्या नहीं लिखा, लिखना लिखा उसमें क्या नहीं लिखा, तो महापुरुष लिखा क्या नहीं लिखा, तो तुम भी लेखक बन गए हो। तो आगम का सेवन ख्याल में है ना, विचारना ये सब कुछ, हम आगम के सेवन पे कुठारा घात कर रहे हैं। कुंद कुंद का वैभव जिससे जमा हुआ था, तो आगम के सेवन से, और फिर लिखान के युक्ति के अवलंबन से, ये युक्ति के अवलंबन से क्या है, युक्ति किसे कहते हैं आलू भाई, सुना कभी है ना, प्रमाण नयात्मको युक्ति, युक्ति की परिभाषा दी है शास्त्र में, क्या दी है, प्रमाण नयात्मको युक्ति, प्रमाण और नय को युक्ति बोलते हैं, और प्रमाण नैरधिगम है ना, सम्मा दर्शन प्राप्त कैसे होगा, लिखा ना तत्वार सिद्धानम सम्मा दर्शनम, फिर तन्य सरकार दधि गमाद्वा जीवाजी वासरा बंध संबंध जरा मुक्ष तत्व, फिर प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण होने से जानने में मिलेगा वो युक्ति। अभी पहले में तो आगम, अब आगम के अलावा युक्ति, यदि आगम में भी प्रमाण से ही चर्चा है, नियम से ही चर्चा है, लेकिन वो कहते हैं कि आगम में जो चर्चा है उसको भी तूने जो न्याय प्रमाण और नय, तो प्रमाण और नय का स्वरूप समझना पड़ेगा कि तुम नहीं युक्ति से, और उस भी कसौटी पर तुम कसो, समझे ना, उस कसौटी पर कसेंगे हम, कौन सी, प्रमाण और नय की कसौटी पर, ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारा कि अपनी तरफ हम तो परीक्षा कर ली, परीक्षा कर ली, क्यों हमने सोने की परीक्षा कर ली, क्या कर ली तुम जानते हो, वो कसौटी पर कसना पड़ता है, और बगल में से वो शराब लाखों बार असली सोने को और नकली सोने को घिस घिस के बगल में देखता है, तब उसे कुछ लगा पता लगता है कि इसमें कितनी खोट है ना। तो आगम से और युक्ति से, और आगम और युक्ति से ही काम नहीं चलेगा, जो भगवान महावीर से लेकर हमारे गुरु पर्यंत जो परंपरा पड़ी है, इसमें लिखा ना ये हमारे गुरु पर्यंत ये शब्द पड़ा है, मैं पढ़ता हूं अभी देखो, अभी पढ़ा था ना, चार पद की मुद्रा, अन्नवादियों द्वारा गृहित एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्वाह युक्तियों के अवलंबन से हुए, निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव, देखो माने गुरु के, गुरु का मतलब क्या, परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर गुरु गणधर देव से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, अब हमारे गुरु पर्यंत कौन कह रहे हैं, ये कुंद कुंद कह रहे हैं तो उनके गुरु पर्यंत, और कौन कह रहे हैं, अमृतचंद कह रहे हैं तो उनके गुरु पर्यंत, और हम कह रहे हैं तो हमारे गुरु पर्यंत, पूज्य गुरुदेव श्री, गुरु का मतलब यहां देवसास गुरु का गुरु नहीं है, क्यों नहीं है, ये तो देशना लब्धि जिससे प्राप्त हो सकती है, वे सब गुरु हैं, जो ज्ञानी धर्मात्मा है वो सब गुरु हैं, फल नहीं ना, 300-400 वर्ष बीच में कोई मुनिराज नहीं रहे तो तत्व तो ज्ञान नहीं रहा क्या, तो कोई ज्ञानी तो रहे ना, तो उन्हीं के माध्यम से रहा ना, पांडे राजमल जी के माध्यम से रहा ना, बनारसी दास के माध्यम से रहा ना, जेतन छावड़ा के माध्यम से रहा ना, कहा ना, यदि नहीं मानेंगे ऐसा तो फिर वो विच्छिन्न होगी परंपरा, ये मानना पड़ेगा हमें है? तो वहां से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, तो ये तीन छेद में से पहले निकले, पहले जो आपको समझनी है वो उसके बारे में आगम क्या कहता है अच्छी तरह से आपको जानकारी होना चाहिए, वो बिना स्वाध्याय के नहीं होगा। और मैंने कई दफे कहा है, एक विद्यार्थी ने कल मेरे उद्धृत किया था मेरी बात को कि देखो बेटा तुम 20 साल स्वाध्याय करते रहना तो वो हाथ पकड़ में नहीं आएगी तुम्हें बात, 5 साल तुम बेटा विद्यार्थी बनकर के यहां पढ़ो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं मैं विद्यार्थी बनाना चाहता हूं, तुम्हें उदाहरण देता हूं कि एक हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है तो वो उसके सहयोगी बहुत होते हैं ना, तो उसमें वो कंपाउंडर वगैरह भी होते हैं और वो बराबर उस 24 घंटा उसके साथ रहते हैं, वो तो वहां लगा कैंची देना, वो कैंची देता है, वो इधर देख नहीं सकता वहां से, वो उठा उठा करके एक चीज उसे देता है, क्यों भी लगाता एक करता है, पहले सारे अंत तक रहता कि नहीं रहता, कितने दिनों में वो डॉक्टर बन जाएगा, वो कब ऑपरेशन करना शुरू कर देगा, बोलो सारी जिंदगी नहीं कर बन पाएगा। और वो जो उसका विद्यार्थी वहां आकर के जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, जिसने सब्जेक्ट लिया है स्पेशलाइजेशन में हार्ट का, क्यों वो कोई 10-20-50 वर्ष का कोर्स नहीं होता है, 1-2 वर्ष का कोर्स है, पहले से तो पढ़ के आई है पूरा सब, अब उसे हार्ट का स्पेशलिस्ट बनना है 1-2, तो वो 10-5 ऑपरेशन में ही उस डॉक्टर के साथ रहता है और वो डॉक्टर बन जाता है क्या। इसलिए तीसरी शर्त है, कौन सी है तीसरी शर्त, परंपरा से गुरु के आदेश। फिर ऐसा नहीं है कि हमने कैसे हमने गुरु मान लिया फलाने को मान लिया, मान लेने से काम नहीं चलता है, वो एक्चुअल होना चाहिए, क्यों। और हमें पूज्य गुरुदेव श्री से सीधा डायरेक्ट सुनने को मिला, परसों तक लोग गए, अब तो धीरे धीरे जो हमारे विद्यार्थी आए हैं ये तो गुरुदेव के स्वर्गवास जाने के बाद इनका जन्म हुआ है, क्यों अब ये क्या करेंगे, यदि गुरुदेव से ही समझना है तो टेप के अलावा कोई साधन नहीं है, और पर्यटन रत्नाकर के अलावा कोई साधन नहीं है, तो फिर वो पढ़ने से हो जाएगा, वो तो टेप सुनने से हो जाता है, हो सकता कि नहीं, लेकिन अब दो के बीच है, एक शास्त्र पढ़ना और एक गुरु से सुनना, अब दो के बीच में एक टेप और आ गया आजकल, क्या करें आनंद भाई, आनंद भाई की कृपा से सारे देश में घर घर पहुंच गया, कंप्यूटर पहुंच गया, सीडी पहुंच गई, कितना महान काम इनने किया है, इनकी भगवान जैसी प्रशंसा की जाए तो भी कम है। गुरुदेव के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का जो भी काम जिसने किया है कर रहा है वो सच्चे दिल से अनुमोदना करने के योग्य है और उसकी अनुमोदना की जानी चाहिए। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या करें, अब बीच में यदि गुरुदेव से ही आपको चाहिए तो फिर टेप से मानना पड़ेगा सुनने से, और नहीं तो फिर हमको लाना पड़ेगा बीच में, क्या करें, 500 विद्यार्थी जो आपने तैयार कराए हैं ना, इनका क्या करें, इनने तो गुरुदेव के दर्शन भी नहीं किए हैं, इनका तो जन्म उसके बाद हुआ है, इनके पास तत्व ज्ञान है ना, वाह 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 वाह, ताली पीटा। देखो अनंत भाई, मैं सच्चे हृदय से बात करता हूं, बहुत पवित्र हृदय से बात करता हूं, मेरे पास शांति भाई जवेरी आए करीब 10 साल पहले की बात है, क्यों वो आराधना कितने वर्ष की हो गई, उसी दिन की बात है, हम 10 साल हो गए वहां ठहरा था मैं राहुल बिल्डिंग में, वो उधर और हमारी पोती का जन्म हुआ था इसलिए मैं वहां रुका था, शांति भाई मेरे पास आए, आने के बाद एक किताब लाए थे, एक किताब लाए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे भेंटने दी, तो मैंने ले ली बहुत आदर के साथ में कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इतनी बड़ी किताब है मैं जरूर पढ़ूंगा, गारंटी से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसे पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं पड़ी तो उन्होंने ऐसा एक पेज निकाला, ये सब मैं कह रहा हूं कैसेट बन रहा है उसके मैं जान रहा हूं फिर कह रहा हूं, तो ऐसा निकाल के कहा ये 4 पंक्तियां पढ़ो, 4 पंक्तियों में ये लिखा था कि युगल जी साहब ने एक लिखा है कि कहा है ऐसा कुछ कि इस समय गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान यदि किसी के पास है तो वो सिर्फ लालचंद भाई के पास है और किसी के पास नहीं है, उन्होंने मुझे पढ़ा,
मेरा मेरी जिंदगी के बहुत थोड़े समय रह गए हैं, 2-5 साल, जो जो बातें हुई हैं मैं सब बता के जाऊंगा इस जनता को, ये छोड़ूंगा नहीं बाकी, पर कसम खा के समय सार को हाथ में लेके बताऊंगा। और मैं उसी आदमी से बात करना पसंद करता हूं जो समय सार हाथ में लेके बात करे। हैं? कसम खा क्या? हाँ, बहुत बढ़िया बात था, धन्यवाद, मैं आपको आपकी बात मानता हूं। मैंने किसी से भी बात नहीं करने की कसम नहीं खाई है, और किसी से भी बैर विरोध रखने की कसम नहीं खाई है, और नहीं रखने की कसम खाई है। बोलो ये खाऊं कसम के नहीं खाऊं। मैं बुद्धिपूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं किसी से भी द्वेष नहीं रखूंगा, मौत की कीमत पर भी। किसी से भी बोलना बंद नहीं करूंगा, किसी से भी बातचीत बंद नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। आप समझ गए ना, ये बात हो सकती है कि मेरा राग उससे कम हो जाए, क्योंकि वो माध्यस्थ भावों का अर्थ मैंने बताया था ना कि द्वेष और राग दोनों कम करना, तो द्वेष तो कम करना ही, लेकिन उसमें विपरीत वृत्ति वालों के साथ राग कम करने का भी आदेश है। वो द्वेष खत्म करके राग बढ़ाना, अहमद भाई ये बात मैं आपसे नहीं कहता हूं, लेकिन मैं तो कहता हूं देश तो गारंटी से नहीं करूंगा, जिससे मुझे बैर विरोध पालना होगा उसे कमठ की तरह से पालना होगा, एक तरफा है ना। और मेरे पास उसकी जड़ी बूटी है, मैंने जतीश भाई को भी बताई थी, कल ही परसों बताई थी, ठीक है ना। सर मैं सच बोलता हूं, बहुत पवित्र हृदय से बताई थी जतीश भाई, आप जब रात में नींद नहीं लगे ना तब सोचना उस बात में, मेरी बात पे, और आपको विश्वास आ गए मेरे हित के लिए कही है तो मानना। कि जो भी संकल्प विकल्प खड़े तो होते ही हैं ग्रस्त भूमिका में है, तो मैं तो इस स्वाध्याय करने में लग जाता हूं, लिखने में लग जाता हूं। क्यों? कि लिखने से जितनी गहराई से अध्ययन होता है ना, लिखने से आदमी परफेक्ट बनता है। अंग्रेजी में कोई कहावत है ना ऐसी, है? क्यों बोलो, खड़े होकर जोर से। हाँ, तो उससे क्या होता है कि उसमें मैं लग जाता हूं तो मेरा सारा जहर उतर जाता है। फिर रात में सोता हूं तो बहुत चैन की नींद से सोता हूं, आज तक मुझे नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोगों को ये शिकायत है कि ये लेटे नहीं कि नींद लग जाती है, लेटने के बाद एक मिनट मेरे को जगा नहीं पा सकते आप। क्यों? क्योंकि सब धो के साफ कर देता हूं। और जैसे मैंने आपको कल कहा था, यहां बहुत बढ़िया बात कही थी कि हमारे गांव में थे ना, तो बच्चे लोगों में जुखाम वुखाम बहुत रहता था, अब तो बहुत दवाइयां होने लगी तो नाक सड़ होती थी, है ना। तो लोगों ने समझाते थे छनक दे छनक या वो छनक के आता फिर आती फिर आती, तो कई फिर उपेक्षा करते बहती रहती। तो वो कहते थे भैया इसे निकाल दो, भगवान और देगा। अभी कारखाना बंद थोड़ी हुआ है, अभी अपन गृहस्थी में है, तो ये कसाय के प्रसंग तो बहुत आएंगे, नहीं नहीं करना, अभी पुरानी को क्यों रखते हो। मतलब मैं आपको आश्वासन देता हूं मैं नहीं रखूंगा बिल्कुल भी, वो कोई विकल्प कुछ भी, समझ गया ना आप, है ना। गुरुदेव का तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं सचमुच हृदय से आप लोगों से अपील करता हूं कि गुरुदेव के वाक्य को जीवन में अपनाओ कि 4 घंटे घड़ी में देखकर स्वाध्याय अवश्य करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी किताब पढ़ना, जो भी आपको बढ़िया से बढ़िया लगे, जिसमें आपकी 100% श्रद्धा हो, वो पढ़ना, आगम को पढ़ना, लेकिन बस स्वाध्याय अवश्य करना। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, युक्ति माने प्रमाण नए, और परंपरा गुरु के उपदेश से। कहां से परंपरा लगाना बोलो, कहां से? महावीर भगवान, गौतम तीर्थंकर, श्रीमंद फरमान से नहीं लगाना। आप पहुंचे ना, मैंने उसमें लिखा है गुरुदेव की उपस्थिति में, वो जो अपना लिखा ना कुंद कुंदाचार्य की किताब लिखी पंच परमागम, और मैंने समयसार की जो भूमिका लिखी उसमें लिखा है कि कुंद कुंद बुद्धिपूर्वक ये घोषणा करते हैं कि केवली शुद्ध केवली भणिदम, कि मैं केवली और श्रुत केवली से कहूंगा तो श्रुत केवली भद्रबाहु, तो मतलब वो बिल्कुल महावीर केवली की परंपरा में भद्रबाहु है, श्रीमंदर केवली की परंपरा में भद्रबाहु नहीं है।
उस परंपरा से चला आया हमारे गुरु पर्यंत। अब पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें बताया, ख्याल में आए ना, वो तो हमारे हृदय में ऐसे बसे हैं ना कि जैसे वो एक दफा रामचंद्र जी को बताया था ना, क्या हनुमान जी का सीना तारी बना, हमारा खून में कतरे कतरे में देख लेना, कभी देखना हो तो। मैं अभिमान के साथ कहता हूं कि जितने भी मुमुक्षु हैं, यदि उसमें कोई गुरुदेव के तत्व ज्ञान को सर्वाधिक प्राप्त करने वाला, आशीर्वाद को प्राप्त करने वाला जिंदा व्यक्ति है तो वो मैं हूं। आप माने चाहे ना माने, किसी के मानने और नहीं मानने से क्या होता, मुझे वोटिंग नहीं चाहिए। मैं आपके पास कभी किसी वोट के लिए नहीं आऊंगा, कभी किसी नोट के लिए नहीं आऊंगा। प्रतिज्ञा है, आज से 40 साल पुरानी प्रतिज्ञा है। आया मैं आनंद भाई आपके घर, हेमंत भाई के घर गया, बता दें सारे देश के सब बड़े नेता कौन नहीं गया एक हुकुमचंद को छोड़कर। सतीश भाई, हाँ तो इसलिए कह रहा हूं ना, सब गए, मैं नहीं जाता हूं। आगम के सेवन से, इप्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से, और उसके बाद नंबर आता है आत्मा के अनुभव से। क्योंकि ये तीन चीजों में चार लब्धियां आ गई। कौन? सयोसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि, फिर वो आत्मा का अनुभव वाली कर्ण लब्धि। और फिर मैंने इसको प्राप्त किया अनुभव पूर्वक। वो ये प्रतिज्ञा करके आपसे कह रहे हैं क्या? ये प्रतिज्ञा करके आपसे कह रहे हैं कि मैं जो बात आपको एकत्र भक्त भगवान आत्मा की बताने वाला हूं, वो मैंने उसमें इन चार चीजों का योगदान है, उससे मैंने जो पाया है वो मैं बताऊंगा। क्योंकि अकेले अनुभव से कहो तो क्या दिक्कत है? है बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अनुभव में असंख्यात प्रदेश नहीं आएंगे। और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आत्मा असंख्यात प्रदेश ही है, तो वो तो आगम की सेवन से आए हैं, है ना? आप समझिए, मैं जो तुम्हें बताऊंगा कि आत्मा गुणस्थान नहीं है, आगमन मार्गम स्थान नहीं है, आगमन आत्मा जीवस्थान नहीं है, तो ये तो आगम से ही आया है ना, तो मेरे अनुभव में आया है। अनुभव से तो ये काम में हो नहीं सकता है, है? ये तो परंपरा गुरु के से ही आया है। माने ये जो समय सार में बताया गया है वो सब अकेले आत्मा के अनुभव में से ही आया है, वो ही नहीं है क्या? आगम की भी इसमें है, आगम से बिल्कुल अविरुद्ध कथन है उनका, और वो बराबर भगवान महावीर से लेकर हमारे गुरु पर्यंत से लेकर जो मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। कह तो कहते फिर तुम्हारे अनुभव का, अनुभव से तो मैंने सील लगाई है, अनुभव से तो मैंने उसको प्रमाणित किया है। प्रमाणित किया है क्या? जैसे अपन कहते हैं कि वो गुरुजी ने पढ़ाया कि वो दो दो क्या होता है, H2O मिलाओ, दो गैसें मिलाओ तो पानी बन जाता है, ऐसा बताया है? अभी मैं नहीं जानता, तुम्हें समझ लेना सब, है ना? तो वो जो मैंने पढ़ा है गुरु मुख से, वो किताब से पढ़ा है और गुरुजी ने मुझे बताया है, अब उसे मैंने तो मिला के देखा है, और इस देखे का बिल्कुल देखो बिल्कुल बात सच्ची है, पक्की है। लेकिन वो मेरे को गुरुजी नहीं बताते और आगम में नहीं पढ़ता तो वे दो गोसें इकट्ठी करके मैं पानी बनाने की सोचता ही नहीं, सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैं छाती ठोक के कहता हूं कि मैंने वे दो गैसें इकट्ठी करके और पानी बनाया है, बनता है। अनुभव की तो सिर्फ सील है, लिखा ना अनुभव की मुद्रा है ना, मुद्रा माने सील होती क्या नहीं होती है। देखो टोरामल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इतना क्लियर लिखा कि जब ये जीव आत्मा का अनुभव करता है तो आत्मा में जाने के पहले जितना ज्ञान होता है और आत्मा के अनुभव में से बाहर निकलने के बाद उस ज्ञान में रंच मात्र भी वृद्धि नहीं होती। क्या देखा, देखो पढ़ लेना स्पष्ट शब्दों में, कि आके कुछ नया ज्ञान उसको हो जाता हो कि जो आज तक उसने आगम में पढ़ के नहीं जाना है, आपको दुख हुआ हो तो मैं आप सबके सामने माफी मांगता हूं, लेकिन वो आपकी क्वालिटी है तो मेरी ये क्वालिटी है, मैं तो अपनी क्वालिटी बताई, मैंने आपका नाम कोई लिया नहीं है, और फिर भी जतीश भाई को दुख पहुंचा हो तो मैं माफी मांगता हूं उनसे। मैंने तो आपको तो कुछ कहा नहीं, मैं तो सबको कहा, लेकिन मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा कुछ मांगने, बस मैं अपनी बात बताता हूं, और इसमें किसी मांगने वाले को बुरा लगे तो मैं उससे माफी मांग सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, हमें भी बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है बहुत सी बातों से, तो उससे क्या करें, उससे बैर मांग करके अगले भव में ले जाने से तो कोई फायदा है नहीं, तो आखिर यही छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दें तो बहुत बढ़िया बात है, मैं तो आपसे माफी मांगता हूं, छोड़ देना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस मुझे बहुत बढ़िया है, मेरे को इसमें कुछ भी विकल्प नहीं है, मैंने सचमुच जतीश भाई के व्यक्ति के लक्ष्य से कुछ नहीं कहा था, मैं तो बिल्कुल कॉमन बात कही थी, कि मैंने 40 साल पहले प्रतिज्ञा ली थी, आज की बात नहीं कहता हूं, तब गोदगा जी मेरे को वहां से लाए थे, तो मैंने उनसे पहला वाक्य बोला था कि सब लोग संस्थाओं में विद्वानों को ले जाते हैं तो पैसा इकट्ठा कराने के लिए ले जाते हैं, यदि आपके चित्त में ये विकल्प हो तो मेरे से बात मत करो। हेमचंद भाई और बाबू भाई के सामने उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हेमचंद भाई ने मुझे गारंटी दी थी कि बिल्कुल आपको ये विकल्प नहीं करना, आप तो ज्ञान के क्षेत्र में काम करना, बाकी जो कुछ होगा वो ये गोदगा जी करेंगे। ये हेमचंद भाई ने वहां पर रतनलाल जी पाटनी के पाठो दी मालगांव के चौराहे पर, नहीं बोल मलार मालगांव के चौराहे पर जो है ना मकान सेठी, रतनलाल जी सेठी की उसमें मैच करके, मुझे वो दृश्य पूरा याद है अभी भी, और मैंने उसे आज तक निभाया है प्रत्यक्ष परोक्ष में, तो प्रसंग आता है तो मैंने अपनी बात कही है ना, और उस काम को मैं अच्छा समझता होता तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करता, तो वो तो मेरी मान्यता बहुत स्पष्ट है। अब मेरे कहने का अर्थ यह है कि उस मान्यता से किसी के विकल्प को ठेस पहुंचती है तो मैं माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अब वो मेरी मान्यता तो नहीं, तो अब मैं बुढ़ापे में वो जो मैंने सारी जिंदगी नहीं किया बुढ़ापे में वो नहीं कर सकता, नहीं करूंगा किसी को, मेरे पास इतना बड़ा वैभव है। पूज्य गुरुदेव श्री के पुण्य प्रताप से उनका अक्षर अक्षर मैंने 25 बार पढ़ा है, सुना है, मैंने कुंद कुंद की बात को बारीकी से पढ़ा है, अमृतकुंद को बहुत बारीकी से पढ़ा है, पिछले 20 साल है तो 40 साल, लेकिन 20 साल इस कुंद कुंद को पढ़ने में ही बिताए हैं। अब मैं किसे, जिनको नहीं आस अकबर की, क्या क्या है, जिनको नहीं आस जिनेश्वर की, मेरे आस करें जो अकबर की, बस तो इतनी सी बात है ना। तो आगम के सेवन से, आगम का भी सेवन मैंने किया है, भरपूर युक्तियों का अवलंबन भी लिया है, नए चक्र पूरा लिखा युक्तियों के अवलंबन के लिए, अध्ययन किया नयों का, परंपरा गुरु के उपदेश से पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को भी मैंने पाया है, पचाया है, और गुरुदेव श्री से उसके लिए सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। और मैं गुजराती नहीं हूं इसलिए मैं आत्मा के अनुभव की घोषणा तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये बीमारी गुजरातियों की है, ये घोषणा वाली मेरे को बिल्कुल भयंकर बीमारी मानता हूं इसको, और पहले ही दिन से इस बात को कहता रहा हूं, है ना। कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं कि मैंने अपना वैभव ऐसे अर्जित किया था, अमृतचंदाचार्य देव कहते हैं मैंने भी अपना वैभव ऐसे अर्जित किया है, वो कहते हैं मैंने समयसार ऐसे लिखा, वे कहते हैं मैंने टीका ऐसे की, तो ये ऐसा कहते हैं कि तुम भी बेटा ऐसा ही करना, तो सीधी क्यों नहीं कहते, सीधी कह देना कि सीधी नहीं कहें, क्यों नहीं कहेंगे? एक बाप अपने बेटे से रोजाना सुबह उठता और जब वो 9 बजे बेटा उसके पास आता तो कहता, बेटा जब मैं तेरी उम्र का था तो सुबह 5 बजे उठता था, 5 किलोमीटर घूमने जाता था, मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, स्वाध्याय करता था, प्रवचन सुनता था, और तू 9-9 बजे तक सोता है, तुझे शर्म नहीं आती है? तो ऐसा कम से कम सैकड़ों बार बाप ने कहा हुआ। तो अब जब उसने कहा कि बेटा, तो वो बोला कि पापा हो गया, मैं बताता हूं कि जब आप मेरे बराबर थे तब सुबह 5 बजे उठते थे, 5 किलोमीटर घूमने जाते थे, पूजा पाठ करते थे, भक्ति करते थे, स्वाध्याय करते थे, यही कहना चाहते हैं ना, मुझे पक्का याद हो गया। लेकिन आप मेरा पिंडा कब छोड़ोगे? ये महासूत्र अपनी महिमा मुझे बताना कब बंद करोगे? कि बेटा जब तक तू ये 5 बजे उठना शुरू नहीं करेगा और ये नहीं करेगा तब तक कहूंगा। तो फिर सीधी क्यों नहीं कहते, मैं था तो मैंने ऐसा किया? ऐसा क्यों कहते कि बेटा इसमें ऐसा है कि तुमने माना तो ठीक, नहीं माना तो ठीक, मेरी इज्जत बच जाती है ना। और मैंने कहा बेटा 5 बजे उठा कर पापा भोग जमाना गया, आपको समझते तो है नहीं, 1 मिनट में तुम्हें कहने में देर नहीं लगेगी बेटा, क्यों आपको समझते तो है नहीं, इसलिए अपनी इज्जत बताने के लिए ये कहता हूं। अर्थ तो उसका वो ही है क्या? तो कुंदपुन्नाथ आदि कहते हैं, अमयचंदनाथ आदि देव कहते हैं, हम तो अपनी इज्जत बताने के लिए कहते हैं कि हमने ये समयसार कैसे लिखा, हमें ये सारी बताते हैं, और तुम्हें ये समयसार पाना है तो कैसे पाओगे? श्री कृष्ण जी कैसे पाओगे? ये 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 है, बोलो क्या कहना है तुमको? ये विधि है। देखो इस प्रकार शब्द ब्रह्म की निष्कर्ष मैंने पूरा तो उन्होंने कह दिया विस्तार से, अब 2 पंक्तियों में निष्कर्ष के रूप में वो स्वयं अमरचंद की टीका में है। मैं आप कहोगे तो अभी संस्कृत टीका पढ़ दूंगा। इस प्रकार शब्द ब्रह्म की उपासना से, निर्वाध युक्तियों के अवलंबन से, गणराधि आचार्य परंपरा के उपदेश से और आत्मानुभव से जन्मे अपने संपूर्ण ज्ञान वैभव से, मैं उस एकत्वभूत भगवान आत्मा को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूं, कृत संकल्प हूं, इस व्यवसाय में मैं बद्ध हूं, सन्नद्ध हूं। देखो संस्कृति पढ़िया पड़ता हूं। स्वविभया समस्तेन अयम तम एकत्व विभक्त आत्मानम दर्शेयम इति बद्ध व्यवसायोस्मि। मैंने इस व्यवसाय में मैंने अपने को बांध दिया है, बद्ध अपन कहते ना, मैंने गांठ बांध के ये निर्णय किया है। तो कहते मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं कृत संकल्प हूं कि तुम्हें समझाऊंगा। अब फिर ये कहते हैं किंतु यदि तुम्हें समझ जाओ तो बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है, अपने अनुभव से प्रमाण करना, अपने अनुभव से समझना नहीं लिखा राजेंद्र, क्योंकि मैंने भी प्रमाण किया था। समझना काय से? आगम से, युक्ति से, काय से? परंपरा गुरु के उपदेश से, और अकेले अनुभव से तो क्या करना है तुम्हें? प्रमाण, प्रमाणी कर्तव्यम, अनुभव से प्रमाण करना। यदि स्खलेयम तदा तू न छल ग्रहणम जागरूक ही भक्तव्यम, तो छल ग्रहण करने के लिए जागरूक नहीं रहना। अब इसमें से लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि देखो उनने माफी मांगी, देखो उनने माफी मांगी, तुमने 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 चाहिए कहा है माफी मांगी, क्या लिखी वहां स्वामी ने तो लिखा है मम क्षमतव्यम को न ब्रह्मयति शास्त्र समुद्र, देखें इन्हें तो माफी शब्द ही नहीं है। और गुरुओं से माफी मंगवाने में तुम्हें इतना मजा आता है, इतने गौरव की बात है कि कुंदकुंदाचार्य हमसे माफी मांगे, कुंदकुंदाचार्य अपने शिष्यों से माफी मांगे, क्यों क्यों मांगे? ठीक है, अरे वे तो सावधान कर रहे हैं कि छल ग्रहण नहीं करना। छल ग्रहण नहीं करना माने क्या? तो छल किसे कहते हैं मालूम आपको? नैयायिकों ने तो एक प्रमाण माना है उसे, लेकिन प्रमेय कमल मातन की एक पंक्ति पढ़कर मैं उसका उदाहरण देता हूं आपको, तो उससे आपको समझ में एक मिनट में आ जाएगा। प्रमेय कमल मातन में लिखा है, आढ़ो वै वैधिवेयम् दृश्यते नव कमला। ये विधवा का पुत्र बहुत पैसे वाला है, आढ़ो माने पैसे वाला, वैधिवेयम् माने विधवा का पुत्र। क्यों? दृश्यते नव कमला, इसका कम्बल नवीन दिखता है। देखो पुराने जमाने की बात, वो जमाना कौन सा, प्रमेय कमल मातन का 1000 वर्ष पुराना। किसी आदमी के पास अच्छा कम्बल होता था तो पैसे वाला माना जाता था। हर एक आदमी के पास कम्बल भी नहीं होता था, होता था तो पुराना फटा होता था। तो वो कहते हैं कि इसका नया कम्बल है। क्या? आढ़ो वै वैधिवेयम् दृश्यते नव कम्बला। समझ गए ना कि ये विधवा का पुत्र पैसे वाला है, क्योंकि इसका कम्बल नवीन दिखता है। पहले कम्बल ही होते पर खत्म, नीचे कोई कपड़ा पहन पहन लिया, ऊपर कम्बल उठ जाए, कंधे पे कम्बल रख लिया, बस हम बहुत बड़े सेठ जी हैं ऐसा समझे, जिसके पास कंधे पे कम्बल हो बस, है ना। तो वो सामने वाला कहते, देखो देखो सफेद झूठ बोल रहा है कि उसके पास 9 कम्बल है। कहाँ है? एक ही तो है। नव शब्द का अर्थ नवीन भी होता है और नव शब्द का अर्थ 9 भी होता है। तो उसने तो बेचारे नवीन के अर्थ में कहा था और इसने 9 का करके, तो वो भी देखो 9 कहाँ है, बेचारे के पास 1 कम्बल है और ये ठोके जा रहा है, 9 कम्बल 9 कम्बल 9 कम्बल कहाँ। इसको बोलते छय, छय के उदाहरण, छल के उदाहरण में उन्होंने ये बात दिखी। तो तुम ऐसा मत करना, क्योंकि एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। अभी मैं वो शब्द को कहूं और तुम दूसरा अर्थ निकाल के दुनिया को बताते फिरोगे, ऐसा कहां है, ऐसा कहां है, ऐसा कहां है, ऐसा कहां है। इसका नाम है छल ग्रहण नहीं करना, जागरूक ही जागृत रहना। और दूसरी बात यह है कि जहां भी माफी भी मांगी है हमारे आचार्यों ने, इनने तो नहीं, उमा स्वामी ने, उमा स्वामी भी तो हमारे लिए उतने ही मरे महान आचार्य है ना, हम उनको 2 नंबर में कैसे डाल सकते हैं। तो उनने लिखा ना, तो भी मैं कहता हूं, पहले तो ये वो जो श्लोक है वो उनका है कि नहीं है, इसकी भी कोई प्रमाणिकता नहीं है। अंत में तो उन्होंने सूत्र खत्म कर दिया, सूत्र से सूत्र लिखे, ना मंगलाचरण लिखा था उन्होंने, ना अंत में कुछ लिखा था, ये तो दूसरों के, मंगलाचरण भी दूसरों का जोड़ा हुआ है, नमा है ना, क्या है। तो वो उसमें क्या लिखा है देखो पढ़ो जरा, अक्षर क्या काय काय की गलती स्वीकार करी, अक्षर मात्र पद स्वर इनसे हीन हो, व्यंजन हीन हो, संधि नहीं हो ढंग से, रेफ नहीं लगा पाया हूं, यानी एक एक चीज गिनाई, अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम। यदि इतनी गलतियां हो तो ख्याल में आई ना, उनके लिए माफी मांगता हूं। भाव की भूल तो स्वीकार की नहीं किसी आचार्य ने, क्यों? भाव की भूल को उनके मन में शंका होती तो वो लिखते ही नहीं, कि मैं भाव भी गलत प्रस्तुत कर सकता हूं तो वो लिखते ही नहीं। अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु मित्र मम, साधु साधुओं से मांगिए तुम, मत अकड़ के भोजाओ, अपने बराबरी के आचार्यों से साधुओं से मांगिए, हम सद्यम तो ना विमोहित शास्त्र समुद्र, समझ में आई ना। और छड़ाला में क्या लिखा है बोलो, शब्द अर्थ की भूल, क्या लिखा ना, भाव की भूल कहां लिखा, शब्द अर्थ की भूल हो तो समझदार लोग संभाल के पढ़ना, क्योंकि भूल शब्द की और अर्थ की भूल तो लिखने वाले से भी हो सकती है, लिखने वाले में लेखक से नहीं, लिपि करने वाले से। शब्द अर्थ की भूल के लिए उन्होंने बात करी है, शब्दों को मत पकड़ना, हमने जो कहा उस भाव को पकड़ना, ये बात वो आचार्य कह रहे हैं। और टोलरमल जी साहब से भी किसी ने कहा था कि भाई तुम लिखते हो कि हम तो अल्पज्ञानी हैं, ज्यादा हम समझते नहीं हैं, ये गुमरसार महान गंभीर ग्रंथ है, इसका अर्थ हमसे लिखा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो मैं बहुत सावधानी रखूंगा, ऐसा लिखा है ना, फिर मैं भी बहुत सावधानी रखूंगा। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि तुम इतने डर रहे हो तो लिखते ही काय को, कौन सी जरूरत है, सब मौजूद है ना पहले, ऐसा कहा तो उन्होंने एक छंद लिखा है, याद है विपिन? मैं सुनाता हूं,
चलो एक मिनट सोचना दो। संशयादि होते किछु, संशयादि होते किछु, जो न कीजिए ग्रंथ तो छद्मस्तन के तो मिटे ग्रंथ करण को पंथ।
क्या गया? यदि जरा भी तेरे को संशय हो गया कि शब्द अर्थ में कहीं भूल हो जाएगी और फिर इस डर के मारे तू शास्त्र नहीं लिखे, तो हर छद्मस्त भी आचार्य हो तो वे भी तो छद्मस्त हैं, तो अकेले हम पे ही रोक नहीं लगेगी, तो छद्मस्त आचार्यों पे भी रोक लग जाएगी। क्या?
संशयादि होते किछु, जो न कीजिए ग्रंथ छद्मस्तन के तो छद्मस्तन के रुके ग्रंथ करण को पंथ।
रुक जाओ, आदमी तो जिसको रोकना है वो तो हर दम पे कुछ ही बात हो जाए, हो जाए तो क्या जरूरत है, हो जाओ तथा हजारों लोग स्वाध्याय से विरक्त हो जाओ, कोई नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ना तो तेरे को क्या है। एक सेकंड में कह दी, हमको तो सारा जगत पढ़े, समय सार पढ़े, गुरुदेव की वाणी को पढ़े, ये तीव्र विकल्प है, ये हम ये नहीं सोच सकते नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ेंगे, हम उस लेन पे नहीं जा सकते। तो क्या कहा कि भाई हो जान दो। अरे पागल क्या कह रहा है, क्यों छद्मस्त माने आचार्य, तो लिखे तो आचार्यों ने ही है, सर्वज्ञ तो लिखते ही नहीं है, तो फिर शास्त्र की रचना ही नहीं होगी। क्या समझ आई? यदि छद्मस्त्री इस भय से कि कहीं कोई बात रह जाएगा स्खलन, समझ रहे ना, तो मैं नहीं लिखूं, इससे अच्छा तो यह है तो छद्मस्त लोग ग्रंथों की रचना ही नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो ग्रंथ ही नहीं होंगे, क्योंकि सर्वज्ञ तो लिखता नहीं है, सब छद्मस्तों ने ही लिखे हैं। यहां तक कि अपने जितने शास्त्र उपलब्ध हैं प्रेमचंद जी, वो एक भी श्रुत केवली ने भी नहीं लिखा, श्रुत केवली का लिखा नहीं है। श्रुत केवली जब खत्म हो गए भद्रबाहु, तो उनके भी 100-200 वर्ष बाद पांचवी परंपरा में आते हैं, शायद भद्रबाहु के बाद में कुंद पांचवी पीढ़ी में आते हैं, एक पीढ़ी 20 वर्ष की मानो तो 100 वर्ष हो जाते हैं, उसके बाद लिखना शुरू हुआ। कोई भी द्वादश अंग का पाठी नहीं था, वो सार छद्मस्तों के ही हैं, तो एक दफे कृष्ण चिन्ह लगाओ तो खत्म हो जाएगा काम। तो आगम है, युक्ति है, परंपरा है, उन सबसे मिलान करके देखकर मैं पूरी सावधानी रखूंगा, और इसलिए मैंने कहा है। तो उन्होंने कहा भाई क्यों, जरूरत ही क्या है, जरूरत ही क्या है? तो उन्होंने कहा भैया हम भी मंद बुद्धि हैं, और हमसे भी मंद बुद्धि बहुत घने जीव इस जगत में हैं, हमसे बुद्धिमान भी होंगे, हम नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन मंद बुद्धि तो बहुत ही है ना, तो उन जीवों को भी ये बात समझ में आ जाए, हम तो इसलिए लिखते हैं, जो तीव्र बुद्धि है वे तो संक्षेप में ही समझ जाएंगे, उनके लिए हम लिखते ही नहीं है, ख्याल में आए ना, हमसे जीव मंद बुद्धि जीव, हमसे भी मंद बुद्धि माने हम मंद बुद्धि है ना, हमसे भी मंद बुद्धि जीव हैं, उनके लिए हमें तत्व ज्ञान की बात लिखते हैं, उन्हें बहुत तर्क से युक्ति से, क्योंकि ऐसे कुतर्कवाद उस जमाने में भी रहे होंगे, ख्याल में ना, ऐसे विकल्प वाले जीव उस जमाने में भी रहे होंगे, जो उनसे कहते होंगे क्यों लिखते हो, क्यों लिखते हो, क्यों लिखते हो, तो उन्होंने उसमें अपना ये सब बात उन्हें लिखने की तक नौबत आई, इस बात को स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें ये लिखने तक का विकल्प आया। तो ऐसे जीव उस वक्त होंगे कि एक रिसर्च का विषय है, तो वो जरूर रहे होंगे, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है, हैं? तो ये पांचवीं गाथा में उन्होंने ये बात कही। अब असली जो छठवीं गाथा है, सातवीं गाथा है, जो समय सार का मूल हार्द है, कल से अपन उसकी चर्चा आरंभ करेंगे।